ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अवसरों वाला देश है और देश में कारोबारी सुविधा सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था तथा उच्च वृद्धि दर का माहौल भी है। उन्होंने कल इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में ये बात कही। श्री मोदी ने निवेशकों से नवाचार, श्रेष्ठ निष्पादन, सकारात्मक पहल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरूआत मजबूत इरादों, उम्मीदों और विश्वास के साथ की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सफलता की अनूठी गाथा लिख रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधार अब अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और एक नव मध्य वर्ग उभरा है। इनकी जरूरतें विकास को गति दे रही हैं और बाजार में मांग बढ़ रही है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में ही बनाए जा रहे हैं और इस वर्ष एप्पल भी नया फोन भारत में बनाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण वर्ष 2013-14 में 29 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 105 अरब डॉलर का हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने के निर्णय को परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति है। देहरादून में आज उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि लड़कियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक कल्याण में योगदान देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने कॉलेज परिसर में एक पौधा लगाया। श्री धनखड़ आज ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी जाएंगे। जम्मू और कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल अनंतनाग का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनता से चुनावों में बिना किसी भय या प्रलोभन के उत्साहपूर्वक मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने इस साल की शुरूआत में हुए लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक मतदान के लिए भी लोगों को बधाई दी। बाद में श्री पोले ने यह सुनिश्चित करने के लिए मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री पोले ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी को निर्देश दिए। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तथा संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मुलाकात की। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए प्रस्तावों को समर्थन दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और दायित्व पर बल दिया। केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसे डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। ये अधिनियम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी। इस निधि से दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएंगी। फ्रांस के लियोन में होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता में 60 भारतीय हिस्सा लेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी 6 सितंबर को भारतीय दल को रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रतियोगियों का चयन इस वर्ष मई में नई दिल्ली में आयोजित भारत कौशल राष्ट्रीय प्रतियोगिता से किया गया। सीमा सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने त्रिपुरा में अवैध प्रवेश के आरोप में बांग्लादेश के 7 नागरिकों तथा 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। पिछले 3 महीनों में भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवेश के आरोप में अगरतला और अन्य स्थानों से 310 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों तथा 34 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। इसराइल और हमास गजा में तीन दिन तक कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। ये सहमति 6,40,000 बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए बनी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस अल्पविराम को संघर्ष विराम नहीं समझा जाना चाहिए। मौसम विभाग ने आज विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक के भीतरी और तटवर्ती इलाकों में कई स्थानों पर बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इस बीच मुंबई और इसके उपनगरों में बारिश कम हो गई है, लेकिन मौसम विभाग ने जालना, परभणी और हिंगोली के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।